हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी लाउडली लाउडली लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। साई गोरा हरिबोल 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 हरिबोल। साई गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है राधा गोविंद जी के झूलन यात्रा उत्सव में। आज तीसरा दिन है। तो राधा गोविंद जी की झूलन यात्रा महोत्सव में ब्रज में अनंत लीला हो रही है। राधा कृष्ण झूल रहे हैं, ग्वाल बाल झूल रहे हैं, कृष्ण बलराम झूल रहे हैं, सब जगह आनंद का मौसम है। यहाँ तक कि अगर आप इस समय इन दिनों में अगर वृंदावन से बरसाना जा रहे हो या वृंदावन से गोवर्धन जा रहे हो या वृंदावन से कहीं भी जा रहे हो, तो जब आप रास्ते में जाते हो तो रास्ते में जितने पेड़ है वो सभी पेड़ों में झूले लगे हुए दिखेंगे आपको। और सब युवा लड़के लड़कियां बच्चे दिन भर झूलते रहते हैं। कदम के पेड़ पर डोरी का लटका हुआ गद्दी रखी हुई है, कुछ कुछ खड़े होके झूल रहे हैं, कुछ बैठ के झूल रहे हैं, कुछ सखियां झूला रही है, कुछ सखा झूला रहे हैं। ये सीन आपको वृंदावन के हर हर गाँव में मिलेगा और यही हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है। और इसी ट्रेडिशन से कल्चर से हमारा भारत भूमि बनती है। हमारा देश बनता है। हमारा देश कोई साधारण देश नहीं है, हमारा देश आध्यात्मिक संस्कृति संपन्न देश, कल्चरली रिच ऑपुलेंट कंट्री, केवल आकार से नहीं आध्यात्मिक कल्चर से। और कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे ये सारे कल्चर जो है संस्कृति वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। हमारे आंखों के सामने कुछ होता था, अभी नहीं होता है। सब लोग विदेश जा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है, और यहाँ के लोग भी बिजी 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 होते जा रहे हैं। जिस जगह पर ये कल्चर है उस जगह के लोग सोचते इसमें क्या है, बम्बई में जाना चाहिए, इसलिए उनका कल्चर समाप्त हो रहा है। स्थान भी लुप्त हो रहे हैं जहाँ जहाँ ये कल्चर होते थे, जहाँ लीला हुई थी। तो झूलन यात्रा के विषय में बहुत सारे स्थान हैं ब्रज में जहाँ पर भगवान का वो फेवरेट स्थान है झूला रचने के लिए। तो जो जो जगह भगवान के झूलन यात्रा के लिए भगवान को बहुत पसंद है, वो जगह पर एक बड़ा विशाल 3 मंजिल तक के हाइट का झूला बना के रखा है, परमानेंट स्ट्रक्चर, और उसमें इस मौसम में झूले लटकाते हैं, झूला लटकाने का व्यवस्था बना दिया है, हुक बना दिया है, और फिर उसमें चेन लगाकर फिर झूला लगाते हैं। तो उसको फूलों से, रत्नों से, माणिक अलंकारों से सजाते हैं, फिर ठाकुर जी के विग्रह को लेके आते हैं। ऐसे कौन से स्थान हैं? बरसाने में एक स्थान है दानगढ़, वो भगवान का बहुत ही पसंदीदा स्थान है। फिर आगे जाएंगे नंदगांव की ओर तो एक जगह है संकेत वन, वो भी भगवान का झूलन स्थली है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ भगवान पसंद करते हैं झूला झूलना, और पूरा ब्रज भी उनका झूलन का स्थान है, फिर भी उनके कुछ स्थान ऐसे हैं वहाँ पर वो अधिकतर लीला करते हैं। ललिता कुंड नाम का एक स्थान है नंदगांव में, उसको ललिता देवी का कुंड कहा गया है। वो उसका नंदगांव में क्या काम है, वो तो बरसाने में रहती है, उस जगह में रहती है, लेकिन ललिता देवी का वो एम्बेसी है, वो वहाँ पर रहकर देखती है नंदगांव में क्या चल रहा है, और वहाँ का जो वातावरण है उसको देखकर फिर आगे की लीला का प्लानिंग होता है। तो एक बार वहाँ पर झूला का महोत्सव का व्यवस्था हो गया था। ये सब की व्यवस्था कौन करते हैं, आयोजन कौन करते हैं? वृंदा देवी। ये वृंदा देवी जो है वो ललिता विशाखा की असिस्टेंट है, वो अष्टकोपी में नहीं है, लेकिन उसका स्थान बहुत विशेष है। डायरेक्ट ललिता और विशाखा देवी के निर्देशन में ये काम करती है। ब्रज में जितने उत्सव होते हैं, जितनी लीलाएं होती है, वो सबका आयोजन वृंदा देवी करती है और ललिता विशाखा से मार्गदर्शन लेती है। तो सारी व्यवस्था करके रखी है, और कृष्ण भगवान रेडी है, सब गोपियाँ रेडी है, ललिता रेडी है, विशाखा रेडी है, एक व्यक्ति अभी तक आए नहीं है। कौन है वो? राधा रानी। वो मेकअप चल रहा है, थोड़ा सा डिले होता है ना, मालूम है ना आपको, दूल्हा दुल्हन जब शादी होती है तो क्या होता है, दूल्हा रेडी, दूल्हा के माता पिता रेडी, दुल्हन के माता पिता रेडी, भाई बहन रेडी, और कौन रेडी नहीं है? दुल्हन। अभी भी मेकअप चल रहा है। तो उस दिन राधा रानी को लेट हो गया, तो उतने में नारद मुनि वहाँ पर आए। नारद मुनि कैसे है, उनको सब जगह प्रवेश है, वैकुंठ में प्रवेश है, वृंदावन धाम में प्रवेश है, गोलोक वृंदावन में प्रवेश है, राक्षसों के दरबार में प्रवेश है, किधर भी उनका अपमान नहीं है, सब जगह पर कंस भी सलाम करेगा उनको, रावण भी दंडवत करेगा, हिरण्यकश्यप दंडवत करेगा, ऐसा उनका पोजीशन है। वो आ जाते हैं उधर और कहते हैं अभी अरे क्या हो रहा है, और कहते हैं अभी तैयारी हो रही है, इंतज़ार प्रतीक्षा हो रही है, कृष्ण आए हैं, राधा रानी आएगी तो उत्सव शुरू कर देंगे। तो उसमें क्या है, वो आती रहेगी, आप ललिता आप अच्छी तरह सज धज के तैयार हो, आप बैठ जाओ कृष्ण के साथ, सखियाँ झुलाएंगी आपको। बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो राधा रानी बैठेगी, मैं तो नहीं बैठूंगी। बहुत देर चलता है ये यस नो। फिर नारद मुनि और कृष्ण और सखियाँ सब आकर बोलती है, नारद मुनि सही कह रहे हैं, थोड़ी देर आप झूलो, फिर जब राधा आएगी तो वो झूलेगी। तो बड़ी ही क्या कहते हैं उसको, विथ ग्रेट रिलक्टेंस, बड़ी नाखुशी से इनके आग्रह के कारण ललिता को झूले पर चढ़ाते हैं, फिर कृष्ण को झूले पर चढ़ाते हैं और सब सखियाँ उनको झोंका देती हैं। जैसे ही पहला झोंका देते हैं नारद मुनि तुरंत निकल कर बरसाना जाते हैं और कहते हैं राधा रानी क्या चल रहा है। बोले झूलन का उत्सव ललिता कुंड में होने वाला है, मैं श्रृंगार कर रही हूँ, थोड़ा देर हो रही है। अरे बहुत देर हो चुकी, तुम्हारी जगह पर ललिता झूल रही है। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, तुरंत वैसे निकलती है वहाँ से, झट 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 से, आपको झूठ लग रहा है जाओ देखो। जाके देखती है तो क्या, ललिता देवी कृष्ण के साथ झूल रही है। तो राधा रानी अपना पैर जमीन पर जोर से पटकती है, गुस्सा होकर चले जाती है। इसको कहते हैं मान लीला। देखिए कैसा लीला है भगवान का, हर दिन अभी झूला जो लीला है ना वो हर रोज होती है, अनंत जगह पे होती है, हर लीला का भाव अलग है। वही ललिता को राधा रानी अपने हाथ से उसका विवाह कृष्ण के साथ करती है। अब भाद्रपद महीना आ गया ना, अभी अगला महीना भाद्रपद है ना, और भाद्रपद अभी पूर्णिमा हो जाएगी, उसके बाद में भाद्रपद का वो जो अधिक मास शुरू हो जाएगा, उसके त्रयोदशी के दिन राधा रानी स्वयं अपने हाथ से अपनी प्रियतम सखी ललिता का विवाह श्याम सुंदर से कर देती है। कहाँ पर? ऊंचा गांव में। ऊंचा गांव में किधर? एक पहाड़ है उधर, सखी स्थली सखी गिरी। गोवर्धन कैसा है? लंबा, वैसे ये भी बहुत छोटा कद का और लंबा पहाड़ है और अनंत लीलाओं की स्थली है उसके अंदर। तो उसमें एक जगह पर एक कोने में उनका विवाह करती है वो, और विवाह होने के बाद में अपने हाथ से दुल्हा दुल्हन यानी ललिता और श्याम सुंदर को पकड़कर झूला में बिठाती है और अपने हाथ से झूलाती है उनको। वही राधा रानी अभी उनको देखकर उनका क्रोध आ रहा है और जा रही है। ये सब जो है वो प्रेम बढ़ाने के लिए है, इसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है। ये केवल कृष्ण का प्रेम स्नेह बढ़े, कृष्ण को और आनंद आए, कृष्ण की प्रेम की उत्कंठा बढ़े, इसलिए सब लीला होती है। तो ये हो गया एक झूला की कहानी। दूसरा आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण लीला हुई है। आज का दिन कौन सा है? श्रावण शुद्ध त्रयोदशी है ना, इज दैट राइट? तो आज के दिन एक सुंदर लीला हुई, तो मैं आपको बताता हूँ संक्षेप में। आप सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, सही जगन्नाथ, सही गौरांगा और सही जगन्नाथ, सही कृष्ण, वही है वो, वही जगन्नाथ के रूप में आते हैं, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ और कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण भगवान राधा रानी का प्रेम का अनुभव करने के लिए, अवतार लिए, और अपने 48 साल की लीला में सभी समय ये सोचते रहे कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन जगन्नाथपुरी के भक्त उनको जाने नहीं देते, कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। अभी ढोले यात्रा आ रही है, अरे अभी ओढ़न षष्ठी आ रही है, अरे अभी ये हो रहा है, अभी झूला आ रहा है, अभी होली आ रही है, अभी ये करो, अभी उत्सव करके जाओ। इसके दो साल दो साइकिल पूरे हो जाते हैं तो फिर वो उत्सुक हो जाते हैं, फिर वो 1510 में वृंदावन जाते हैं। उस समय वृंदावन में रहते हैं, कुछ समय गोवर्धन में रहते हैं, कुछ समय भ्रमण करते हैं और अधिकतर समय वृंदावन में रहते हैं। लेकिन जब भ्रमण में रहते हैं तो उस समय गोवर्धन में आते हो, और गोवर्धन में आने के बाद उनको उनके जो परम गुरु हैं ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी की कथा उनको पता है कि हमारे दादा गुरु के लिए कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे गोपाल के रूप में, पहाड़ के पत्थर के बीच में से प्रकट हुए थे, स्वप्न दिया था, फिर वो उनको वो माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया था और उनको गोपाल की आज्ञा के अनुसार गोपाल जी का विग्रह गोवर्धन के ऊपर अनियोर गांव में स्थापन किया था, ये भी सब उनको पता था। तो उनको बड़ी उत्सुकता थी गोपाल का दर्शन करने के लिए। वो गोपाल जी कौन है? आज इनको हम श्रीनाथ जी कहते हैं, वही है गोपाल जी। उस समय उनका नाम गोपाल जी था, फिर वो नाथद्वार गए, श्रीनाथ जी हो गए। तो उनको बहुत इच्छा थी, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण के रूप में थे और बलराम के साथ में थे तो हर दिन गोवर्धन पे चढ़ते थे और लीला करते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भक्त बनकर आए, भक्तावतार। तो भक्त जो होते हैं हमारे जैसे आप जैसे, वो कभी गोवर्धन पर नहीं चढ़ते, गोवर्धन की शिला को पाँव नहीं देते हैं कभी, बहुत भयंकर अपराध माना गया है। तो चैतन्य महाप्रभु तो भक्त बनकर आए थे, भक्ति सिखाने के लिए आए थे, तो वो भी गोवर्धन पर्वत पर कभी चढ़े नहीं, और गोपाल जी तो गोवर्धन पर्वत पे हैं, और मन में इच्छा हो रही है कि गोवर्धन का दर्शन, गोपाल जी का दर्शन होना चाहिए, अभी कैसे करें, वो तो पहाड़ पे बैठे हुए हैं। तो गोपाल जी स्वयं जानते हैं अपने भक्त के मन में क्या इच्छा हो रही है, तो गोपाल जी क्या करते हैं, गोपाल जी को भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने की अभिलाषा है, चैतन्य महाप्रभु को गोपाल का दर्शन करने की अभिलाषा है, और वो जानते हैं भक्त के हृदय का भाव क्या है, तो गोपाल जी को दर्शन करने की इच्छा होती है, इसलिए गोपाल जी एक अफवाह फैलाते हैं। अफवाह को क्या बोलते हैं, रूमर। उस समय सबसे बड़ी रूमर क्या थी, या सच क्या था, या डर किसका था, मुगल आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, शस्त्र लेकर आ रहे हैं, मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, ये करने के लिए आ रहे हैं, आतंकवाद फैलाने वाले हैं। तो गोपाल जी ने स्वयं अपनी तरफ से ब्रजवासियों में ये अफवाह फैला दी कि मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं। अब मुगल आ रहे तो पहले क्या होता है, सबसे पहले मूर्ति लेके भागते हैं, उनको मालूम है उनका अटैक किधर होता है, पहला सबसे पहले मूर्ति को भेदन करते हैं, उसके बाद मंदिर, उसके बाद लोग, लेकिन पहले उनका अटैक मूर्ति पर होता है। तो जब ये अटैक होता था, सबसे पहले पुजारी वो मूर्ति को लेकर भागते थे, कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, तो कुएं में डालते थे, या तो नदी में डालते थे, या तो सरोवर में डालते थे, या कहीं और छुपा के रखते थे। राधारमण जी को गद्दी में छुपा के रखा था, बाकी सब तो वृंदावन से उड़ के राधा कुंड गए, कोई काम्य वन गए, कोई जयपुर चले गए। तो गोपाल जी को लेकर पहाड़ से उतरे और भाग के एक गाँव में गए जिसका नाम है गुलाल कुंड, गाँव का नाम है गांठोली। गांठोली कारण क्या उसका, क्योंकि वहाँ पर ललिता विशाखा ने एक बार राधा और कृष्ण के कापड़ को गांठ मारी थी, कृष्ण का वस्त्र, राधा रानी का वस्त्र, उसको गांठ लगाई थी, उनको पता नहीं था, मग्न थे, उनको मालूम नहीं था, छुपके से गांठ लगाई थी। जब होश में आए, देखा तो गांठ पड़ी हुई, तो हंसे वो, उनको संकोच भी हुआ। तो नाम क्या पड़ा गाँव का, गांठोली। उधर एक गुलाल कुंड है, जब वो शर्माए बहुत ही, देखा कह रहे गांठ पड़ी हुई है, तो तुरंत सभी सखियों ने पिचकारी निकाली और उनको पूरा 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 रंग डाला उनके ऊपर, सूखा रंग भी डाला, गुलाल का जो पानी होता है वो भी डाला, इतना रंग डाला कि एक पूरा सरोवर तैयार हो गया, उसका नाम क्या पड़ा, गुलाल कुंड। और वो गुलाल कुंड में वो जो स्थान है गांठोली गाँव, वो एक ही स्थान है ब्रज में जिसमें 12 महीने होली खेलते हैं, 52 दिन होली चलती है, वैसे भी वसंत पंचमी से आगे 52 दिन एक्चुअल होली चलती है पूरे ब्रज में, लेकिन वो समाप्त होती है 52 दिन के बाद, लेकिन इस जगह पर 360 दिन 12 महीने होली चलती है। कभी भी जाओ उधर, गुलाल लगाते हैं, आप भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे, आपको पिचकारी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो गाँव में गोपाल जी का विग्रह लेके गए वो, और एक मंदिर में छुपा के रखा, कोई डाउट नहीं ना, कोई किसी और का मंदिर है तो गोपाल जी कैसे रहेंगे उसके अंदर, कौन देखने आएगा उधर, वो जाएंगे ढूंढने के लिए, तोड़ने के लिए गोपाल जी का मंदिर, लेकिन गोपाल जी नहीं मिलेंगे तो और कहीं चले जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि अफवाह नहीं थी, वो उनके लिए सच था कि मुगल आ रहे हैं, और उसके वजह से गोपाल जी गुलाल कुंड के मंदिर में आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भाग के वहाँ गए, और वो कौन सा दिन था, आज का दिन था, श्रावण शुद्ध त्रयोदशी। कहते हैं आज के दिन गोपाल जी मूर्ति से बाहर आकर प्रत्यक्ष होकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन दिया है। और ब्रज के भी एक संत हैं, उनको भी मिलके आए, वो एक जगह का नाम है टोड़को घनो, थोड़ा सा आगे है वो टोड़को घनो, जंगल में एक भक्त रहा करते थे, उस भक्त को गोपाल जी को खिलाने की बहुत इच्छा थी, और वो गोपाल जी को बुला रहे थे, गोपाल जी आओ मेरा भोग खाओ, तो वो पहले उधर गए, उसका भोग खाया, फिर इधर आए, इधर आके चैतन्य महाप्रभु आलिंगन दिया। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रेम से उन्होंने कीर्तन किया, 7 दिन और 7 रात कीर्तन किया, सारे गांठोली वासी, ब्रजवासी, गोवर्धन वासी आनंद में विभोर हो गए। और फिर 7 दिन के बाद पता चला कि अफवाह थी। तो अफवाह जब मालूम पड़ी अफवाह है तो क्या हुआ, चलो गोपाल जी को वापस रखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने नेतृत्व किया, ही लेड द संकीर्तन पार्टी, और उनके नेतृत्व में उनके गायन में झूमते हुए नाचते हुए इनको वहाँ से, वो आज के तारीख में भी 4 से 5 किलोमीटर है, तो पूरा प्रोसेशन निकाला, ग्वालबाल सभी ब्रजवासी सभी नाचते 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 वो अनियोर गांव के नीचे आए, जहाँ पर वो है ना मुखारविंद, जहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, वहाँ पर आए। फिर महाप्रभु उधर खड़े रहे, फिर ब्रजवासी पुरोहित उनको ऊपर लेके गए, मंदिर में लगा दिए। तो ये आज का सुंदर लीला है। ये सब कैसा है ना, ये सब ब्रजवासियों को पता है, ब्रजवासी मुझे ये फ़ोन करके बताते। पहले उधर यशोदा का बर्थडे कभी ये पता नहीं था, नंद महाराज का बर्थडे कभी पता नहीं था। तो कोई ये गोवर्धन के कन्हैया लाल गोस्वामी हैं, बड़े संत अच्छे हैं वो, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और ढूंढ के निकाला। अभी कम से कम 15 साल हो गए, हर साल नंद बाबा बर्थडे यशोदा बर्थडे मनाते हैं, और यशोदा का बर्थडे जो है वो हमारे आई कैम्प के समय आता है, तो हर समय हम लोग जाते हैं उधर अटेंड करने के लिए। और वहीं से नंदगांव से आगे 8 किलोमीटर एक गांव है, उसका नाम क्या है, मेहरानो। वो मेहरानो में यशोदा का जन्म हुआ था, उसका मायका है वो, तो उधर बहुत बड़ा उत्सव होता है। पहले नंदगांव में आरती होती है, भोग लगता है बहुत धूमधाम से, फिर सभी नंदगांव के वासी जितने भी है मोटरसाइकिल गाड़ी लेकर मेहरानो गांव पहुंचते हैं, फिर वहां पर शाम तक गीत गायन नृत्य करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, डांस करते हैं, बहुत आनंद बनाते हैं। तो ऐसा ब्रज का आनंद है। तो अभी हम लोग आज से बलराम जयंती की कथा आरंभ कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सब जगह पर सब मंदिरों में बलराम जयंती का उत्सव जो है वो एक ही दिन मनाते हैं, कभी श्रावण शुद्ध पूर्णिमा को, है ना, जिसको हमारे और देश में जितने भी जगह है उधर नारली पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जो है, इस दिन तक समुद्र में जाना मना है क्योंकि बारिश आती है ना बहुत। वो जो आषाढ़ का महीना आता है ना, आषाढ़ पूर्णिमा, उसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन समुद्र में जाना बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, तो वो बंद हो जाता है। तो जो समुद्र के अंदर मछली मारते हैं ना सब लोग, क्या कहते हैं उसको आप लोग, फिशरमैन, वो सब जाना बंद करते हैं, रेड अलर्ट होता है वहाँ। तो नारली पूर्णिमा के दिन फिर समुद्र को नारियल अर्पण करते हैं, नारियल तोड़ के समुद्र को अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर समुद्र में जाना शुरू कर देते हैं। तो नारियल की प्रतियोगिता भी होती है, वैसे नारियल पकड़ते हैं, फिर ऊपर से कोई मारता है, वो जिसका टूटेगा वो हार गया, फिर नारियल ऐसे अर्न करते हैं। और नारल पूर्णिमा के दिन सब जगह पर जितना भी राज्य है यहाँ पर नारियल होता है। कहाँ कहाँ होता है, बंगाल में होता है, पुरी में होता है, आंध्रा में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरला में होता है, और बाकी जगह जाता है, लेकिन ये 5-6 राज्य में अपना खुद का होता है। जो जो समुद्र और उपसागर के पास में होते हैं वहाँ पर नारियल बहुत होता है। तो सब जगह पर नारियल से बने हुए जितने व्यंजन हैं वो भगवान को भोग लगाते हैं। नारियल का दूध डाल के खीर, नारियल डाल के मिठाई, हसाड़े, है ना, नारियल और स्वीट और पोहा और गुड़ और इलायची डाल के उसका हसाड़े बनाते हैं, नारियल का राइस बनाते हैं, नारियल के लड्डू बनाते हैं, नारियल की बर्फी बनाते हैं, नारियल का जितना पदार्थ है सब बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। और क्या होता है नारली पूर्णिमा में, और क्या होता है, हाँ, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का भी इतिहास है, ये बहुत रोचक इतिहास है। हम सब जानते हैं ना बलि महाराज को वामन देव ने बहुत वरदान दिया, बहुत सारे वरदान दिए, उसमें एक वरदान क्या दिया, मैं तुम्हारे लोक में आऊँगा, सुतल लोक में, जो मैं तुमको दे रहा हूँ उसी में आऊँगा, और मैं भेज दूँगा लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर गेट कीपर बनूँगा। अब ऐसा कभी होता है क्या, समझो किसी ने आपने महल प्रेजेंट दिया और उसका वॉचमैन बनेंगे क्या आप लोग, नहीं बन सकते। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने प्रेमी हैं, इतने अद्भुत हैं, इतने दिव्य हैं कि पूरा सुतल लोक, एक बंगला नहीं, पूरा सुतल लोक, उसको भी इंद्र से भी अधिक पावरफुल बनाकर, ऑपुलेंट ऐश्वर्य संपन्न बनाकर, वो बलि को फेंट देते हैं, बोले जाओ उधर जाके रहो, तुमको इंद्र बनना था ना, इंद्र से भी बढ़कर राज्य तुमको देता हूँ मैं। और इतना सा वरदान देते हैं, उसके एंड में बोलते हैं मैं आऊँगा और द्वारपाल बनूँगा, और वास्तव में जाते हैं। वो सुनकर प्रहलाद महाराज भी वहाँ पर थे, बोलते हैं मेरे भगवान वहाँ पर द्वारपाल बन रहे हैं, मैं भी चलता हूँ। जैसे ये दरवाज़ा समझो ऐसे, है ना, एक तरफ वामन देव एक तरफ प्रहलाद, दोनों बैठे हैं गेट कीपर बन के। तो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठकर, वामन देव और बलि महाराज, वामन देव और प्रहलाद महाराज बलि महाराज का गुणगान कर रहे हैं, वैष्णव के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं, एक दादाजी एक भगवान। ये लीला है सुतल लोक की। अभी वामन देव जो हैं वो विष्णु है ना, तो वैकुंठ से गए अवतार लेने के लिए, क्योंकि सब लोगों ने प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा डोंट वरी मैं आता हूँ, अदिति का बालक बन के आता हूँ, चिंता मत करना। तो लक्ष्मी जो उनकी पत्नी है उनके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, जा रहे हैं अवतार लेने के लिए। छोटा सा अवतार है, 125 साल का अवतार नहीं है, 11,000 साल का अवतार नहीं है, एक दिन का अवतार है। जाएंगे बलि का गर्भवरण करेंगे, देवताओं को राज्य वापस देंगे, आ जाएंगे 1 day 2 day मैक्सिमम। लेकिन वापस ही नहीं आए वो, समझो मैं मेरी पत्नी को घर पे छोड़ के कारोबार में आ गया, कितना है बलराम जयंती का प्रोग्राम, 1 तारीख को लौटना है, 1 तारीख गया, 8 तारीख गया, 10 तारीख गया, तो चिंता होगी ना किधर गए प्रभु जी। तो ऐसे लक्ष्मी जी को चिंता हो गई किधर गए, आना चाहिए था। तो नारद मुनि अपना है ना ब्रॉडकास्टिंग चैनल, सब पता रहता है उनको। तो मुनि ने बताया ऐसा ऐसा हुआ, बलि महाराज शरणागत हो गए, गर्भहरण करने गए थे लेकिन भगवान को समर्पित हो गए, आत्मसमर्पण किया तो भगवान भी बड़े मूड में आ गए, सब कुछ दे दिया उनको और उसके जाके उधर गेट कीपर बने। अरे बाप रे, अभी भक्तों के प्रेम कैसा है लक्ष्मी को मालूम है, लक्ष्मी नोज कैसा प्रेम करते हैं अपने भक्तों पर। तो बोले अभी मुझे जाना पड़ेगा उधर, नहीं तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं नहीं गई तो उधर ही रह जाएंगे। वो भक्त के ऊपर इतना प्रेम करते हैं, वो स्वयं उन्होंने एक जगह पर शास्त्र में लिखा है कि मुझे बलराम जितना प्रिय नहीं है, मुझे उद्धव जितना प्रिय नहीं, लक्ष्मी जितनी प्रिय नहीं, उतना मुझे भक्त प्रिय है। बोलो आई डोंट लव बलराम, आई डोंट लव लक्ष्मी दैट मच आई लव माई डिवोटीज। उसको पता है कि मुझसे भी अधिक भक्त पर प्रेम करते हैं, तो लाना है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जाते हैं वहाँ तर और सीधे दरबार में प्रवेश करते हैं। तो बलि महाराज देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अरे माता आ गई मेरी, दंडवत प्रणाम करते हैं, गदगद हो जाते हैं, बोले माता क्या सेवा करूँ। तो लक्ष्मी देवी क्या करती है, पूर्णिमा का दिन था वो श्रावण महीने का, तो वो बलि महाराज को राखी बांधती है। अभी राखी बांधने में तो भैया हो गया ना वो, अभी राखी बांधने में रिवाज क्या होता है, एक बार बहन ने राखी बांधा तो भैया को कुछ गिफ्ट देना पड़ता है। राखी बंधन के दिन बहन जी भाई के घर जाती है, भैया दूज के दिन भैया बहन के घर पे जाता है। ये हमारी संस्कृति है, करना चाहिए, बहुत बड़े वरदान है उसके अंदर, बहुत बड़े वरदान है। भैया दूज के दिन पे शास्त्र में लिखा है कि केवल बहन के ही हाथ का भोजन करना चाहिए, जहाँ कहीं भी बहन हो वहाँ जाना चाहिए, या तो उसके घर जाना चाहिए जहाँ मूल घर है उसका, और उसी के हाथ का भोजन करना है। वृंदावन धाम में भैया और बहन जमुना जी में स्नान करते हैं, 80-80 साल के बुढ़े भाई बहन भी स्नान करते हैं, हाथ पकड़ कर डुबकी लगाते हैं। उस दिन जमुना जी में डुबकी लगाया और बहन के हाथ का भोजन पाया, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने वरदान दिया है। बड़ी लंबी कहानी है उसकी, वही पावरफुल चीज़ रक्षाबंधन पे भी है, उस दिन भी बहन के हाथ का खाना है, लेकिन रक्षा बांधने के बाद में भैया को गिफ्ट देना है उसको। तो फिर वो पूछते हैं बहन जी अभी आपको क्या गिफ्ट दूँ, तो मेरे पति को वापस दो। अभी आप लोग सब हंसे कि नहीं, नेचुरली सब लोग हंसे, लेकिन बलि महाराज नहीं हंसे, बलि महाराज बेहोश होकर गिर गए। क्यों, अरे जिनको प्राप्त करने के लिए उसको खुशी नहीं है कि वो डोर कीपर बन के आए, खुशी किस बात की है, मुझे प्राप्त हो गए, मेरे पास में है, मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ में है। क्या क्या करना पड़ा उनको, देखो सव यज्ञ करने पड़े, उसके सव का सवा यज्ञ में वो आए, फिर वो वचन दिया, फिर वो त्रिविक्रम हो गए, फिर वो सब सब नाप लिया, और भिखारी बना दिया बलि महाराज को, फिर वरुण पास से बांध लिया, फिर घसीटा, और क्या क्या देवताओं ने ताली बजाई, अपने परिवार के सामने इतनी निंदा हो गई है ना, सब राजा उनके जो मंत्री संतरी सब खड़े हैं, इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे रिश्तेदार सब देख रहे हैं, उन सबके सामने इतनी मानहानि हो गई। राजा त्रिविक्रम जो क्या कहते हैं उसको, त्रिलोक विजयी बलि महाराज को बांध के वरुण पाश में घसीट के लेके जा रहे हैं। बोल इतना सारा प्राइस चुकाया, लेकिन बलि महाराज क्या बोले, थैंक यू माई लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, आपका तीसरा कदम मेरे सर पर रखो, आप मेरे अहंकार पर रखो, मैं उसको अर्पण करता हूँ आपको। एक जगह पर मान हानि हो रही है, एक जगह पर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है ना, दिल के अंदर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाहर क्या हो रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। बाहर क्या हो रहा है, सब जगह से अपमान हो रहा है, परिवार के सामने, शत्रुओं के सामने, शत्रु कौन है, सब खड़े हैं देवता लोग, वेट कर रहे हैं इसके पावर से हमको भगवान मुक्त करेंगे, हमारा राज्य वापस देंगे, सब लोग वेट कर रहे हैं, अभी उनका मान हानि करेंगे सब वापस, सब लोग उधर भी खड़े हैं, दुश्मन भी खड़े हैं, दोस्त भी खड़े हैं, परिवार पत्नी सब खड़े हैं, सबके सामने उनका अपमान हुआ। लेकिन शास्त्र में वर्णन आता है कि बलि महाराज हृदय से भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, उनको कष्ट नहीं हो रहा था जो बाहर से दिख रहा था, तो वो भावना से भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए, और भगवान ने उनको फिर वरदान दिया, शुक्राचार्य को ऑर्डर दिया, इसका 100 वाला जो यज्ञ है ना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना, क्योंकि 100 वाले यज्ञ में दान पुण्य पूरा नहीं हुआ है, प्रॉमिस कुछ किया था और आधा ही दिया, वो आगे का दिया नहीं, तीसरा कदम दिया नहीं, यानी यज्ञ असफल हो गया, और 99 सक्सेसफुल, 100 वाला असफल, तो 100 असफल तो इंद्र कैसे बनेगा। तो भगवान बोलते हैं वो इंद्र बनने के लिए 100 यज्ञ किया था, मैं अभी चाहता हूँ कि उसको इंद्र बनाना है मुझे, तो शुक्राचार्य मैं आपको आदेश देता हूँ कि कुछ भी करो, मंत्र जब कुछ करना है करो, और 100 वाला यज्ञ जो है सक्सेसफुल बनाओ। तो शुक्राचार्य ने कहा, हे भगवान, जहाँ पर आपके पवित्र नामों का कीर्तन होता है उस यज्ञ की सारी त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिस जगह पर, जिस कार्य में, जिस यज्ञ में, जिस स्थान में आपके नाम का कीर्तन होता है उस स्थान के सारे दोष त्रुटि कमियां पूरी हो जाती है, वो परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद ये कहने के बाद राक्षसों के राजा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया है उसी यज्ञशाला में, और 100वें यज्ञ सफल कर दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ, कितने चीज़ें हो गई, कितनी चीज़ें हो गई, घटना कैसे हो गई, कितनी, ऐसा शांत मूवी चल रहा है, सब लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं, सब लोग ऐसे अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, चेंज 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 हो रहा है सब कुछ। इतना सारा होने के बाद में बलि महाराज सोच रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान ने मुझे अपना बनाया, अपना समझा, हाँ, मेरे सर पे पाँव रखा, सुतल लोक दिया, स्वयं आए मेरे दरबार में, इधर उनकी इच्छा है इसलिए वो द्वारपाल बने, कितनी बड़ी बात है, इतना कष्ट करने के बाद भगवान प्राप्त हुए, और लक्ष्मी जी कह रही है मुझे भगवान वापस दो, तो इसलिए वो फेंट हो गए, हम लोग हंस रहे हैं और वो फेंट हो गए, बहुत देर तक बेहोश रहे, उसके बाद जगे, बड़े दुखी हो गए थे, वो भी सोच रहे हैं कैसे भगवान को यहाँ पर रखूं। तो कहते बहन जी एक काम करो ना, आपको भगवान चाहिए ना, आप दोनों इधर रहो सुतर लोक में, क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ भी मेरे साथ भी दोनों हो जाएगा। तो बहन जी जो है वो बड़े भाई का प्रेम देख के बहुत प्रसन्न हो जाती, बोले ठीक है कोई बात नहीं, वो एक एक हमारी रिक्वेस्ट है आपको, बहन जी बोल रही है भाई को, आप है ना आपके दरबार में 50 गेट है, कभी आप इधर से आते हो, कभी इधर से आते हो, कभी इधर से आते हो, कभी उधर से आते हो, कभी इधर से आते हो, तो हर टाइम जो अनाउंसमेंट होता है ना, कहाँ से आ रहे हैं, तो मेरे पति को इधर से भागना पड़ता है, समझो आप यहाँ से आ रहे हो, उसको लगता है उधर से आ रहे हैं, तो बलि महाराज उधर, भगवान वामन देव उधर खड़े हैं, अचानक न्यूज़ आती है कि इधर से आ रहे हैं, तो पूरा घूम के इधर आके खड़े हो रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। आप है ना एक ही जगह से आया करो, 10 जगह से मत आया करो, चलो कोई बात नहीं। फिर कहते हैं अभी आप साथ में रहो, द्वारपाल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लक्ष्मी देवी और वामन देव सुतल लोक में नारली पूर्णिमा, हाँ, श्रावण पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक निवास किया है, और कार्तिक पूर्णिमा जब चतुर्थ मास समाप्त होने का समय आया तो लक्ष्मी देवी ने कहा अभी हम लोग बहुत देर रहे, अभी हम जाते हैं। तो बलि महाराज की आज्ञा लेकर वामन देव और लक्ष्मी देवी वैकुंठ लोक चले गए। ऐसा ये तो वो राखी जो है ना वो लोकल फेस्टिवल नहीं है, वो बोनाफाइड फेस्टिवल है। भाई जो है वो बहन की रक्षा करता है, इसलिए वो कच्चा धागा बांधते हैं प्रेम का। तो राखी बंधन का उत्सव भी नारदी पूर्णिमा को होता है। और सबसे बड़ा कारण क्या है उसका, इस उत्सव का, बलराम जी भगवान जन्म लेते हैं, बलराम जयंती मनाते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि बलराम जी की जयंती की कथाएं जो है वो लंबी 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 नहीं होती है, एक आध जन्म का बताते हैं थोड़ा बचपन का, बाद में कथा खत्म, एक घंटा में प्रसाद चालू। लेकिन 8 दिन अगर 3 घंटा भी कथा करेंगे ना तो बलराम की लीला पूर्ण नहीं हो सकती। मैंने पिछले साल में वो निगड़ी में कथा किया था, 4 दिन 2-2 घंटे सुबह शाम, कितना हो गया 16 आवर्स, फिर भी अधूरा रह गया, पूरा नहीं कर पाया, छोड़ के आया क्योंकि टाइम खत्म हो गया। इतनी लीलाएं हैं बलराम की लीला में, कितना कितने भाग हैं। एक बलराम की लीला है जन्म की, यानी गोकुल में जन्म हुआ। दूसरा हिस्सा है ब्रज लीला, गोकुल वृंदावन नंदगांव बरसाना जो भी कुछ उनका ब्रज धाम का लीला है। फिर कृष्ण के साथ में वो चले गए, फिर मथुरा लीला, फिर उसके बाद द्वारका लीला, फिर उसके बाद हस्तिनापुर लीला है ना, फिर उसके बाद में तीर्थयात्रा लीला, क्योंकि जब वॉर शुरू हो गया तो वो तीर्थयात्रा चले गए। तो पूरा भारत भर में पूरा लंबा चौड़ा महाभारत में वर्णन दिया है, महाभागवत में वर्णन दिया है, सारे शास्त्रों में वर्णन दिया है, कहाँ कहाँ गए हमारे बलराम जी महाराज। फिर लौट के आए एंड में दुर्योधन के युद्ध के समय, फिर वापस द्वारका गए, फिर बीच में 2 बार ब्रज में आए संदेश लेकर, है कि नहीं। फिर उसके बाद में यादवों का नाश हो गया, फिर स्वयं भी चले गए भालका तीर्थ से, उसके बाद में कृष्ण भी चले गए। इतनी सारी लीला है, एक ब्रज की, एक ब्रज के बाहर की, वो साधारण लीला नहीं है, सब जगह पर बहुत आनंद है। तो ये सब लीलाओं का वर्णन सुनना चाहिए क्योंकि बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं। ऐसे कहते हैं बलराम की कृपा है इसलिए कृष्ण क्या है कि हमको पता चल रहा है, और नित्यानंद प्रभु हैं जो बलराम जी के अवतार हैं वो है इसलिए उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु कौन है इसका पता हमको चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में 2 बड़े ग्रंथ हैं, एक है चैतन्य भागवत, वो किसने लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने, व्यास देव के अवतार है। लेकिन वो कौन है वृंदावन दास ठाकुर, डायरेक्ट डिसाइपल है नित्यानंद प्रभु के, और बार बार लिखते हैं कि मेरे गुरु नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं ये सब लिख रहा हूँ। और कृष्णदास कविराज बार बार लिखते हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्णदास चैतन्य चरितामृत लिख रहा है। तो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, और भी 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, चैतन्य चंद्रामृत, चैतन्य चंद्रोदय, ऐसे 5 स्क्रिप्चर्स हैं। उसमें 2 जो प्रधान स्क्रिप्चर्स हैं चैतन्य महाप्रभु के, उसमें दोनों लेखकों ने क्या लिखा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का लीला में वर्णन कर सकता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी, ये दोनों की कृपा से, बलराम की कृपा से कृष्ण के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में, नित्यानंद प्रभु के विषय कृपा से ये सब नॉलेज प्राप्त हो रहा है। क्योंकि बलराम जी ये हमारे भक्ति के फाउंडेशन है, अधिष्ठान कहते हैं उसको, फाउंडेशन का मतलब अधिष्ठान, जिसके ऊपर ये बिल्डिंग, अब ये जो आपका 1 मंजिल का मंदिर है फिर भी इसके नीचे फाउंडेशन है, इसके ऊपर ये एक ग्राउंड फ्लोर खड़ा है, और भी ऊपर बनाएंगे तो और खड़ा रहेगा, और कौन पकड़ेगा उसको फाउंडेशन। तो श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम है लेकिन बलराम जी उनके प्रथम अवतार हैं, लीला अवतार। लीला करने के लिए चैतन्य श्री कृष्ण भगवान बलराम में विस्तारित होते हैं, अवतार लेते हैं। और फिर बलराम जी का 2 कार्य है इम्पॉर्टेंट, एक कार्य वो लीला का विस्तार करते हैं, लीला को बनाने के लिए एटमॉस्फेयर बनाते हैं, और दूसरा कार्य है निर्माण, क्रिएशन, एक क्रिएशन के लिए काम शुरू करते हैं, लीला के लिए काम शुरू करते हैं। तो लीला के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गौलोक वृंदावन बनता है बलराम जी के बाद, कौन बनाते हैं? बलराम जी स्वयं बनाते हैं। गौलोक वृंदावन की भूमि, गौलोक वृंदावन में जमुना, गौलोक वृंदावन में गोवर्धन पर्वत, गौलोक वृंदावन में 12 वन, गौलोक वृंदावन में सारी भगवान की धोती कुर्ता आसन बैठने का जो भगवान यूज़ करते हैं सब कुछ वस्तु जो है छोटी और बड़ी, माला से लेकर अलंकार से लेकर धोती से लेकर दुपट्टा से लेकर जो बोलो आप, मुरली भी भगवान की, ये सब कुछ भगवान बलराम जी का विस्तार है, बलराम जी का रूप है। उसको शांत रस कहते हैं। उस शांत रस के रूप में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। फिर उसके बाद में बलराम जी स्वयं जो है वो लीला अवतार है भगवान के, इसलिए भगवान की लीला का विस्तार करते हैं। सब लीला करने के लिए जो भी ज़रूरत है उसका प्रोडक्शन करते हैं, सिचुएशन निर्माण करते हैं, वस्तु निर्माण करते हैं, लीला के लिए वातावरण बनाते हैं, सब कुछ बलराम जी बनाते हैं। उसके बाद में बलराम जी संकर्षण के रूप में अवतार लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड डिग्री, तो संकर्षण जो है वो और चार रूप में विभाजित हो जाते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये उसको कहते हैं चतुर्व्यूह। और ये जो है वो आगे निर्माण में भगवान की सहायता करते हैं। संकर्षण फिर संकर्षण नंबर 2 में विभाजित होते हैं, उनका रूपांतर फिर और एक बार चतुर्व्यूह में होता है, उसका रूपांतर फिर नारायण में होता है। सारे वैकुंठ के मालिक नारायण हैं, उनके द्वारा बलराम जी सारे वैकुंठों का नियंत्रण करते हैं, उनके द्वारा सारे विष्णु निर्माण होते हैं, जो हर एक वैकुंठ में एक एक विष्णु इंचार्ज हैं। आप सोच सकते हैं बलराम जी की पावर क्या है। अभी तक हम लोग मटीरियल वर्ल्ड में नहीं पहुँचे हैं, उधर ही है, ऊपर ही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है, जन्म मृत्यु नहीं है, उधर की बात कर रहे हैं। इतने सारे एक्सपांशन उधर हो गए, इतना ब्रह्म ज्योति निर्माण हो गया, उतना पूरा वैकुंठ निर्माण हो गया। वैकुंठ एक नहीं है, वैकुंठ अनंत है, अनंत वैकुंठ है, एक गोलोक वृंदावन है। तो सारे वैकुंठ में ये बलराम जी नारायण के माध्यम से एक एक विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं और वैकुंठ का नियंत्रण करते हैं, वैकुंठ को चलाते हैं, वैकुंठ की लीला करते हैं। फिर ये नारायण जो है जो अभी इधर का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, एक और एक्सपांशन होता है उनका अवतार, और वो है महाविष्णु। तो इनडायरेक्टली किसके अवतार हो गए वो महाविष्णु? बलराम जी के। और ये पहले व्यक्ति है जो मटेरियल वर्ल्ड भौतिक दुनिया के भौतिक विश्व के इंचार्ज हैं। और ये इनका जो निर्माण है ना वो एक बादल के नीचे है, उसको कहते हैं महत्तत्व। वो बादल के वजह से, बहुत विशाल बादल होता है, उसके वजह से अंधेरा निर्माण होता है बादल के नीचे, क्योंकि ब्रह्म ज्योति रोकते हैं उसको, और उसके नीचे अंधकार निर्माण होता है। वो अंधकारमय जगह पे यह कारुण्यशाही विष्णु जो है वो अपने बॉडी से ये जल छोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, कारण जल। वो कारण जल का सागर निर्माण होता है, उसके अंदर लेटे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, अनंत ब्रह्मांड एक एक रंध्र से निर्माण हो रहा है बीज रूप में, फिर बीज रूप से विकसित होता है, फिर फुल्ली डेवलप ब्रह्मांड निर्माण होता है, फिर एक एक ब्रह्मांड में वो महाविष्णु जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। यानी गर्भोदकशाही विष्णु कितने हैं? जितने ब्रह्मांड है उतने। कारण विष्णु कितने हैं? एक विष्णु कारण विष्णु। लेकिन कारण विष्णु को अनंत ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं गर्भ उदकशाही विष्णु, जिसके नाभि से कमल निकलता है। हर एक ब्रह्मांड में हर एक विष्णु के कमल निकलता है, और उस कमल में उस ब्रह्मांड का ब्रह्मा जन्म लेता है। कोई 4 मुख वाला है, कोई 10 मुख वाला है, कोई 10,000 मुख वाला है, कोई 1,00,000 मुख वाला है, कोई 10,00,000 मुख वाला है, कोई 10 कोटि मुख वाला है। ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड के अनुसार अलग अलग ब्रह्मा जन्म लेते हैं। फिर वो गर्भोदकशाही जो बलराम जी के अप्रत्यक्ष अवतार हैं, फिर और एक अवतार लेते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, और वो जो है विष्णु लास्ट वाले क्षीर उदकशाही विष्णु, अर्थात जो दूध के सागर में लेटे हुए हैं। कितना लोगों को पता है कि दूध का भी सागर होता है? जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है उनको पता है कि एक सागर नमकीन पानी का होता है जो हमारी पृथ्वी पर है, और एक सागर होता है इस ब्रह्मांड में जो मिल्क का होता है, फिर गन्ने का, हाँ गन्ने को क्या बोलते हैं, कोब्बू हमारी लैंग्वेज में, वो इक्षुरस, उसका भी एक समुद्र होता है, फिर शराब का भी समुद्र होता है, फिर दही का भी समुद्र होता है, फिर घी का भी समुद्र होता है, घृत सागर, फिर सात प्रकार के समुद्र हैं। उसके अंदर एक समुद्र है क्षीर सागर, उसके किनारे पे वो क्षीर सागर विष्णु रहते हैं, और वो विष्णु ब्रह्मा ने निर्माण किए हुए हर जीव के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। ये सारा काम एक बलराम जी की वजह से होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसके बीच में ये बलराम जी एक और रूप धारण करते हैं, कौन सा रूप है वो बताइए? अनंत शेष, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अनंत शेष, अनंत शेष के रूप में विस्तारित होते हैं। और आश्चर्य की बात है, अनंत शेष कितने हैं? जितने ब्रह्मांड है उतने अनंत शेष है, वो भी एक नहीं है, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में वो ब्रह्मांड को अपने सर पे धारण करते हैं। उसकी कथा क्या है? ये जो है ना साप वंश, ये कद्रु देवी के द्वारा निर्माण हुआ है। ये कद्रु देवी कौन है? कश्यप मुनि की पत्नी है। कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां हैं, कश्यप मुनि प्रजापति है, वो सारे जीव सृष्टि को निर्माण करने के लिए अलग अलग पत्नियों के साथ विवाह करते हैं। एक के तरफ से पक्षी को जन्म देते हैं, पक्षी वंश, एक तरफ सर्प वंश, एक देवता वंश, एक दानव वंश, एक दैत्य वंश, ऐसे पूरे 84 लाख योनि का जितने जितने हैं सब उसकी पत्नी है, उसके तरफ से निर्माण होता है। तो एक पत्नी है कद्रु, जिसके द्वारा सारे सांप का जन्म होता है, और सबसे पहला जो सन है वो कौन है? अनंत शेष, हजारों फन वाले साक्षात बलराम जी, लेकिन वो उनका ऐश्वर्य अवतार है। बलराम जी जो है वो लीला अवतार है, और बलराम जी का जो ये अवतार है वो ऐश्वर्य अवतार है, पावर, पावर डिस्प्ले। तो एक लीला है बड़ी लंबी महाभारत की, संक्षेप में क्या होता है कि कद्रु देवी अपने सांपों को शाप देती है कि तुम सब लोग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे, तुमने मेरा अपराध किया है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए जो जो लोग हाफ लोगों ने आदेश का पालन किया, हाफ लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया वो सब जल के भस्म हो जाएंगे। तो अनंत शेष सोचा कि मुझे ये झगड़े में नहीं पड़ना है, कौन बचेगा कौन मरेगा। वो सीधा विष्णु के पास गए, यानी कृष्ण के पास गए, और पूछा कि भगवान मुझे ये माता पिता के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना है, मुझे इससे मुक्त होना है। तो भगवान क्या बताते हैं, आप एक काम करो, आप ब्रह्मांड के नीचे जाकर ब्रह्मांड को पकड़ के रखो, वो सेवा करने से आप इस शाप से अकेले मुक्त हो जाओगे, बाकी सब आपके भाई बंध वो शाप से बद्ध रहेंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। तो वो अनंत शेष के रूप में वो उनको पूछते हैं कि कितना देर तक पकड़ना पड़ेगा, ड्यूटी आवर क्या है, बिगिनिंग आवर क्या है, एंड आवर क्या है ना, कभी पंच करना है कभी पंच आउट करना है। तो भगवान भी बड़े होशियार हैं, भगवान बोले आप मेरा नाम लेना शुरू करो, आप मेरा लीला का वर्णन करना शुरू करो, जब मेरा नाम, भगवान के नाम तो अनंत है ना, जब मेरे नाम समाप्त हो जाएंगे और मेरी लीलाओं का गुणगान समाप्त हो जाएगा तब छोड़ देना। वो कहते अभी भी शुरुआत नहीं किया उन्होंने, अभी भी उधर ही है वो, क्योंकि तो भगवान के नाम अनंत है, गुणगान अनंत है, लीला अनंत है, तो शुरुआत कैसे होगी, एंड कैसे होगा। तो कहते हैं कि अभी भी भगवान का गुणगान अनंत शेष अपने हजारों फनों से कर रहे हैं, तो भी बोलते शुरुआत भी नहीं किया उन्होंने। कहते हैं कि अपने हजार फनों से अगर 1000 दिन तक भी बलराम अनंत शेष भगवान की लीला बोलते हैं, तो कहते हैं एक दिन की ब्रज लीला पूरा नहीं कर सकते हो। भगवान ने कितना दिन ब्रज लीला किया? 11 साल 52 दिन, उसको 11 से 360 मल्टीप्लाई करो, 360, और फिर 52 दिन ऐड करो, कितना दिन हो गए, उस दिन में 24 घंटे होते हैं, वो एक दिन की लीला भी पूरा नहीं कर सकते हैं। 1000 वर्ष भी 1000 मुख से गुणगान करेंगे तो फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड जो इतना भारी है वो मैं कैसे पकड़ूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं कूर्म बनकर तुम्हारे नीचे आऊँगा और तुमको सपोर्ट दूंगा। तो वो कूर्म अवतार लिया भगवान ने, और वो बलराम जी के नीचे, अनंत शेष के नीचे खड़े हैं, उसके ऊपर बलराम जी खड़े हैं, उसके बलराम जी के सर पर ब्रह्मांड खड़ा है, सारे फनों पर, उसके बीच में वृंदावन धाम है। कितनी बड़ी सेवा है, देखो आप अमेजिंग सर्विस। अभी कहाँ जाए, सबका नीचा लोग कौन सा है, रसातल सबसे नीचे, ये 14 भुवन में लास्ट वाला रसातल है, उसके नीचे है वो उसके सर पे, पूरे ब्रह्मांड को आप सब लोग उसके सर पे है। ध्यान ध्यान करो इस बात का। लेकिन वो भगवान की जब सेवा करते ना, जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है उसका शाप कर्म पाप पुण्य सब खत्म हो जाता है। और ये सेवा करने से वो जो माता का शाप था उससे अकेले पुत्र अनंत शेष मुक्त हो गए, और बाकी सब लोग में से आधे लोग जल गए, आधे जो नहीं थे शाप वो बच गए। ये महाभारत की लंबी कथा है। तो ये जो बलराम जी का तत्व है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि स्वयं परम भगवान है, वो साक्षात कृष्ण जैसे। भागवत के 10वें स्कंद में 46वां श्लोक अध्याय में लिखा है कि कृष्ण और बलराम में कुछ अंतर ही नहीं है। जितने ऐश्वर्य, जितने कला, जितने गुण कृष्ण के अंदर है उतने सारे बलराम जी के अंदर है। सब कुछ सेम है उनका, केवल वर्ण अलग है। जो कलर है उनका, वो जो स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु में जो आकाश में बादल होता है ना सफ़ेद रंग का, उस रंग के हमारे बलराम जी। चांदी और जो घना बादल है श्रावण महीने का, जो बारस बादल अभी बरसने वाला है, वर्षा करने वाला है, घनश्याम, वो वर्ण हमारे कृष्ण का है। बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। और दूसरा फर्क जो है, बाकी सारे फर्क जो है वो भाव में है, शक्ति में नहीं है। भाव में क्या फर्क है, भगवान परम भगवान है और बलराम जी सेवक भाव में है, कॉन्स्टेंट सेवक भाव में है। इतनी ज़्यादा शक्ति भगवान की बराबरी होने पर भी सेवक बने रहने के लिए बहुत बड़ी नम्रता की आवश्यकता होती है। जितना व्यक्ति के पास ऐश्वर्य होता है उतना उसका अहंकार, उसका पावर, उसका पोजिशन, उसका डिग्निटी बढ़ जाता है, और उतना वो सेवा करने के लिए कमज़ोर हो जाता है। तो इतना सारा पोजिशन है उसका। लेकिन बलराम जी ऐसा एग्जाम्पल है कि भगवान जैसा ऐश्वर्य होने पर भी बलराम जी सबसे अधिक सेवा भाव में हैं। इतनी सेवा भाव में है कि भगवान के 5 रस हैं, वो 5 रसों में कोई भी सेवा नहीं कर सकता है। हम सब मिलके अपने अपने तरफ से 1 रस में सेवा कर सकते हैं। या तो शांत रस बनो, तो मोर बैल जितने भी है ब्रज में वो शांत रस में है, वो साथ साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते भगवान के साथ। गोपियाँ क्या करती हैं, नृत्य करती हैं श्रृंगार रस में, माधुर्य रस में, वो जाकर बाकी भगवान के साथ खेलने को जाते नहीं है, वो रास खेलते हैं भगवान के साथ। माता यशोदा जो है माता पिता का प्रेम करते हैं, नंद महाराज, यशोदा, उपनंद बाबा, प्रभावती, तुंगी, ये सब जो बड़ी बड़ी गोपियाँ हैं, भाइयों की वाइफ है और बड़े भाइयों की, बड़े भाई है, दो बड़े भाई है नंद महाराज के, दो छोटे भाई है, बीच वाले नंद महाराज है, ये सब लोग जो है माता पिता का प्रेम करते हैं, रास नहीं खेलते उनके साथ, गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, लुका छुपी नहीं खेलते हैं, माखन चोरी में साथ में जाते नहीं माता पिता उनके, वो अलग मूड है उनका, वो दोस्त लोगों का मूड है, वो माता पिता का मूड है, वात्सल्य रस है, ईसाख्य रस है, वो सेवकों का अलग रस है, वो पैर धोने के लिए मदद करते हैं, ड्रेसिंग करने के लिए मदद करते हैं, माता जी जो बोलते हैं वो लाके देते हैं, अरे जल लेके आओ और पानी लेके आओ, शंख लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, अलंकार लेके आओ, वो मेरे हाथ में दो, पकड़ के रखो, ये सारी सेवाएं, कभी पैर दबाना है, कभी पैर मसाज करना है, कभी गीत गाना है, कभी डांस करना है, वो सेवक लोग हैं सब, बहुत सारे सेवक हैं। यशोदा की सेवा करते हैं, भगवान की भी सेवा करते हैं। और गोपी क्या है, वो रात को मिलते हैं, वो गया चरण के साथ जाते नहीं है। तो ये 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। लेकिन ये सारे पांचों रसों में भगवान बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे, पहले मैंने आपको बता दिया कि गौलोक वृंदावन पूरा उन्होंने बनाया है। गौलोक वृंदावन में भगवान के वस्त्र अलंकार, मोर पंख, मुरली सब भगवान के वो बने हैं, सिंहासन बने हैं, जनेऊ उनके बने हैं, बिस्तर बने हैं, हर चीज़। वही बलराम जी जब भौतिक दुनिया का निर्माण होता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, पृथ्वी का निर्माण होता है, भारतवर्ष का निर्माण होता है, भारतवर्ष के अंदर वृंदावन का निर्माण होता है, तो वो वृंदावन भी स्वयं बलराम जी बनते हैं। भगवान जहाँ जहाँ भी जाएंगे उनका पूरा बैकग्राउंड जो है ना, पार्श्वभूमि, फाउंडेशन, अधिष्ठान, वो हमारे बलराम जी बनते हैं, वो वो क्या हो गया, शांत रस। दास रस में क्या हो गया कि जब भगवान थक जाते हैं, बहुत देर तक गाय चरा रहे हैं, भोजन किया थोड़ा थक गए, तो बलराम जी उनका चरण अपने गोद में लेते हैं और दबाते हैं उसको, गर्मी लग गए तो हवा देते हैं, सुलाते हैं अपनी जगह पर उसको प्रेम से, कभी सर रखते हैं, कभी उनका पैर अपने गोद में लेकर मलाई मालिश करते हैं, भगवान को हर तरफ से सेवा करते हैं प्रसन्न करने के लिए। ये हो गया दास्य रस। अभी साख्य रस में क्या है, फ्रेंडशिप, उसमें खेलना कूदना, बाल खींचना, मजाक करना, हाँ ताने देना, हराना जीतना, सर पे चढ़ना उनको, सर पे चढ़ाना, राउंड देना उनको, कभी कुछ अपशब्द उच्चारण करना, कभी कठोर बोलना, कभी चिढ़ाना, गेंद फेंकना, माखन चोरी करना, गाय चराना, सब नकल करना पक्षियों की, जल में कूदना मेंढक बन के, ये सब कुछ फ्रेंडशिप में होता है, उसमें कोई अपराध नहीं होता है, वो फ्रेंडशिप भी उनकी है। वात्सल्य कैसा है उनका, तो बड़े भाई है ना, तो माता कहती है देखो आप बड़े हो, ये कन्हैया बहुत नटखट है, जमुना किनारे भागते रहता है, कभी गिर जाएगा जमुना किनारे, तो जमुना के उसके बीच में आप खड़े रहना ताकि जमुना में गिर ना जाए, और राक्षस आएगा तो रक्षा करना उसकी, अपना एक टीम बनाना, उसको कॉर्डन करना पूरा, मंडली भद्र सब ऐसे बड़े बड़े, थोड़े बड़े उम्र के ग्वाल बाल है, उनको संग लेके, तलवार लेके, हाथ में डंडा लेके, हाँ फावड़ा लेके, वो पर्ची लेके सब चलते रहते हैं उसको कवर करके। अपने कैसे चलते मिनिस्टर लोग, चलते रहते आगे पीछे, कैसा कवरेज चलता है ना ऐसा उनका, वैसे उनके पीछे पीछे चलते रहते। फिर माँ कहती है देखो तुम बड़े हो ना, तुम्हारा उत्तरदायित्व है, ऐसा लिखा है शास्त्र में कि अगर बलराम जी नहीं होते तो कभी यशोदा ने कृष्ण को जंगल में गाय चराने के लिए भेजा ही नहीं होता, बिकॉज बलराम जी इज देयर, यशोदा देवी आश्वस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, उसको बहुत गाइड करती रहती है, डिस्कस करती रहती है, चर्चा करती रहती है, वो उसको रिपोर्टिंग करते रहता है कि आज ऐसे किया, आज वैसे किया, आज वह मट्टी खाया, आज ये किया, आज वो किया, आज चोरी किया, सब बताते रहता है, फिर वो उसको गाइड करती रहती है कि उसको ऐसे समझाना, ऐसे संभालना, इधर देखना उधर देखना, इसके बीच में खड़े रहना, वो क्या है, वात्सल्य भाव है। माता पिता जैसा ही है, बड़े भैया का प्रेम कैसा होता है, माता पिता जैसे ही होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन कोई उसी का उपांग है वो। अब ये चार रूप रस जो है इसके अंदर बलराम जी बनकर ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो गोपी भाव है उसके अंदर लड़के को प्रवेश नहीं है, कल लड़कियाँ सब, और इनको उसमें भी सेवा करने की इच्छा है कि भगवान रास रचाते हैं, कितनी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो मैं वन बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, मैं अलंकार बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं उधर जो वन के अंदर कुंज में जो बिस्तर बनेगा, जो शेज बनेगी वो मैं बनूंगा, लेकिन जाऊंगा कैसे। तो हमारे बलराम जी की देखो, सेवा करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको सेवा करने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल हो जाता है। आपको भी आज की तारीख में डीटी वर्शिप करने के लिए फुल है, जन्माष्टमी के दिन किसी को प्रवेश नहीं मिलने वाला, लेकिन इतनी इच्छा होती है तो वो इच्छा को भगवान पूरी कर देते हैं, ऐसा रास्ता बना देते हैं कि क्या बताएं, चमत्कार हो जाता है। तो वो बलराम जी, उनकी सेवा करने की इच्छा बहुत तीव्र है, इसलिए राधा रानी के माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। क्या बोल के जन्म लेते हैं, राधा रानी की बहन बनकर, क्या नाम है उसका, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी गोपी बनकर राधा रानी की माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। एक भाई है सीदामा, एक राधा रानी है, छोटी बहन अनंग मंजरी है, उसका राधा कुंड के पास एक विशाल कुंज है, वो विशाल कुंज में राधा रानी की सेवा करने की व्यवस्था करती है, वो जो भी राधा रानी को चाहिए वो सब कुछ बलराम जी उसके रूप में सेवा करते हैं, साक्षात उनके महल में रहते हैं उनकी बहन बनकर, और पूरी सेवा करते हैं ताकि कोई संकोच नहीं है कि लड़का कैसे घुसा है इसके अंदर। ये सेवा भाव है, सेवा भाव इतना पावरफुल है कि सेवा करने के लिए लिंग बदल कर स्त्रीलिंग लेने को भी तैयार है। कितना लोग तैयार है इसमें बताऊं, हमको क्या कहा जाएगा, आपको बहुत इंटीमेट सेवा मिलेगी, आपको क्या लड़की बनना पड़ेगा, तो बोलेंगे मैं लड़का अच्छा हूँ, बहुत सेवा कर रहा हूँ। एक होता है ना, अपने लड़का होने का एक, पुरुष होने का एक अहम होता है ना कि मैं भी थोड़ी कम सेवा नहीं कर रहा, अच्छी सेवा कर रहा हूँ, आगे की सेवा नहीं चाहिए, ठीक है इधर ही अच्छा है। लेकिन शुद्ध सेवक क्या होते हैं, शंकर जैसे, उनको बोला गया कि तुमको गोपी बनना पड़ेगा, रास में प्रवेश करना है, तो उन्होंने सोचा नहीं पार्वती क्या बोलेगी, अगर मैं कन्या बन गया, गोपी बन गया, तो पार्वती को क्या बोलूँगा, पहले पूछा कैसे बनना है बताओ, तो बोले जाओ उधर मान सरोवर में स्नान करो, उधर गोपी शरीर प्राप्त होगा, फिर लौट के आओ। एक छलांग लगाई, उधर पहुंच गए, स्नान किया, लड़की बनकर वापस आ गए, सोचा नहीं। और आज भी उधर गोपी बनकर खड़े हैं, गोपेश्वर महादेव। ये उसको कहते हैं भक्ति, यानी कुछ भी कर सकते हैं भगवान की सेवा में। तो वैसे बलराम जी कुछ भी कर सकते हैं, स्त्री बने हैं, गोपी बने हैं, कन्या बने हैं, और भगवान की चिरंतन सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा आज तक किसी भी अन्य जीव ने नहीं की है, एक ही व्यक्ति है, एकमात्र बलराम तत्व है जो पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। ओके, अभी मैं आपको आज ये सोचा था, मैंने अभी आधा घंटा बचा है, उनके ना तीन प्रधान भाग हैं लीला के, बलराम जी के तीन प्रधान अंश हैं, मतलब बलराम के स्वरूप हैं। एक है राम लीला में लक्ष्मण बन के आए हैं, एक कृष्ण लीला में बलराम बनकर आए हैं, एक गौर लीला में नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं। ये तीन प्रधान स्वरूप हैं उनके, और तीन प्रधान विविधता है उनके लीला में। तो लक्ष्मण के रूप में क्या विशेषता है उनकी, वो छोटे भाई के रूप में आए। आप सब लोगों को पता होगा, जब पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ था ना, तो पुत्र कामिष्टि यज्ञ में वो जो यज्ञ में से एक पुरुष आया, यज्ञ पुरुष, उसके हाथ में कलश था, उसके हाथ में पायस था, पायसम। तो वो पायसम उन्होंने दशरथ को दिया और बोला अपने पत्नी में बांट दो। तो तीन पत्नियां थी, तो दशरथ महाराज ने क्या किया, उसको दो भाग किया, और दो भाग जो है, एक भाग कैकेयी को दिया, एक भाग कौशल्या को दिया। फिर तीसरी पत्नी बाकी है ना, सुमित्रा, तो दोनों ने बड़े प्रेम से अपना अपना हिस्सा आधा आधा कर दिया और वो सुमित्रा को दिया। तो जो हिस्सा कौशल्या का था, जिसको कौशल्या की तरफ से सुमित्रा को पहुंचा, उसमें से लक्ष्मण का जन्म हुआ, और जो कौशल्या के पास बचा, जो उसने पिया, उससे राम का जन्म हुआ। इसलिए राम और लक्ष्मण में प्रेम है बहुत। और जो हिस्सा सुमित्रा को दिया कई कई नहीं, अपना हिस्सा निकाल कर जो हिस्सा सुमित्रा को दिया, आधा अपना सुमित्रा ने भी दिया और बलराम कौशल्या ने भी दिया ना, तो कौशल्या का हिस्सा था, लक्ष्मण जी आ गए। और जो कई कई से हिस्सा आया उसमें से कौन आए, शत्रुघ्न। और जो कई कई ने खाया उसमें से कौन आए, भरत। इसलिए भरत और शत्रुघ्न में बड़ा प्रेम है, ये लॉजिकल है बहुत। तो ये लक्ष्मण जी जन्म से कहते हैं, रामायण में लिखा है, जन्म से लेकर लीला समाप्त होने तक कभी भी कोई डिमांड नहीं किया कि मुझे ये चाहिए, केवल सेवा और सेवा और सेवा ही किया। जब खेलने का समय था बालक के रूप में तभी भी सेवा किया, जब बड़े हो गए तभी भी सेवा किया, जब वनवास में गए तभी भी सेवा किया, जब राज दरबार में राजा बने तभी भी सेवा किया। कहते कुछ मांगा ही नहीं लाइफ में कभी, कुछ डिमांड ही नहीं किया। जब शादी हुई ना सीता की, तो शादी के पहले प्रभु राम की जितनी भी सेवाएं थी वो सब अकेले लक्ष्मण करते थे। शादी हुई तो सीता जी भी देख रही है, सब जगह पे रहे, बेडरूम में भी आ रहे हैं, उधर बाथरूम में साफ कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं, बड़ा संकोच हो गया, तो मैं तो आपकी पत्नी हूँ, ये तो सब जगह छाए हुए हैं। तो फिर प्रभु रामचंद्र को मीटिंग करना पड़ा, एक मीटिंग किया उन्होंने और बोले जब मैं घर के बाहर होता हूँ तब जो भी करा मेरा काम है, जो भी काम है, पानी पीना है, खाना खाना है, बैठना है, उठना है, क्या करना है, दरबार में बैठना है, जो भी उसे वहाँ पर सेवा करनी है, वो सब सेवा लक्ष्मण करेगा। और जब मैं घर में आया, प्रवेश किया घर में, महल में, तो सीता देवी चार्ज ले लेगी, बाकी का सेवा करेगी। लक्ष्मण बहुत दुखी हुए, सीता बहुत खुश हुई। वनवास में कोई अंदर बाहर का ऑफिस आवर कुछ है नहीं, उधर सब कुछ 24 आवर वन में ही है, पूरी सेवा लक्ष्मण करते थे। आप लोगों ने सुना होगा शायद, वो जब ही चित्रकूट में घुसे ना, चित्रकूट के जंगल में ना कई वर्षों तक सूरज का प्रकाश जमीन पर टच नहीं करता था, इतना घना जंगल था, छोटा भी और बड़ा भी, दोनों तरफ से पैक पूरा, रास्ता नहीं चलने के लिए। और आपको वन में भ्रमण करना है तो तलवार लेकर लक्ष्मण जी ना सब पेड़ पौधे काट के रास्ता बनाते थे, पेड़ पौधे काटते थे, खुद चलते थे और पत्थर कंकड़ कांटे निकाल के बाजू में करते थे, और फिर राम चलते थे, फिर सीता चलती थी। एक दिन नहीं मैडम, सर एक दिन नहीं, 14 साल तक यही किया उन्होंने। हर रोज चलना है तो रास्ता बनाना है, रास्ता काटना है तलवार से, और उनके लिए फिर फल लेके आना है, कंदमूल लेके आना है, पर्णकुटी बनाना है। इजी काम नहीं है वो, हमारे जैसा 40x40 का पर्णकुटी नहीं है वो, पता है किधर से किधर तक है वो, राम कुंड से लेकर तपोवन तक पर्णकुटी है। उधर रहने का बात किया ना उन्होंने, उधर रहते थे वो, तो घर पे ही तो चुरपणखा का नाक काटा ना, तो वो किधर है, तपोवन में है। रामकुंड किधर है, उधर है, द कालराम मंदिर वहाँ पर है। इसका अर्थ ये हुआ कि कालराम मंदिर से लेकर तपोवन तक कम से कम 4-5 किलोमीटर है, वो सब पर्णकुटी, वो उसको हाथ से बनाना है, पत्तों को सिलाना है, और वो कितनी सेवा है, दिन भर सेवा करना है, और रात को ये लोग का राम के चरण को मालिश करना है सोने के समय, वो राम सो गए फिर वीरासन में बैठना है, या तो धनुष लेकर पूरा गश्त लगाना है, आगे पीछे रात भर जगना है, क्योंकि कोई प्राणी आएगा, कोई शेर आएगा तो उसका वध करना है, राक्षस आएगा तो उसका वध करना है। लक्ष्मण जी 14 साल सोए ही नहीं। निद्रा देवी हाथ जोड़कर लक्ष्मण के पास आई और बोली कुछ सेवा दो कम से कम, कितना दिन हो गया सेवा नहीं दी आपने। तो बोले आपको मेरे पास सेवा नहीं मिलेगी, अब मेरे पत्नी के पास जाओ, मेरी माता जी के पास जाओ और मेरी पत्नी के पास जाओ, वो लोग भी दीपक लगा कर जग रहे हैं, उनको सुला दो, उनको जगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जग रहा हूँ ना काफ़ी है। तो निद्रा देवी वहाँ गई है, लक्ष्मण ने निद्रा देवी को खड़ा नहीं किया है, बोलो 14 ईयर्स पूरा जो भी कुछ आपके सामने वो रामायण में होता है वो सब में, युद्ध के समय में भी वो तंबू में रात को रावण राम के तंबू के बाहर पहरा देते थे, और 14 साल के बाद में जब वापस गए, राज्याभिषेक हुआ राम का और मंत्रिमंडल हुआ, तो मंत्रिमंडल के पहली सभा में लक्ष्मण बैठे हैं तो वहाँ पर जमाई दे रहे हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं अरे क्या लक्ष्मण है, कोई शिष्टाचार नहीं है, कैसा बिहेव करना पता नहीं है, राम की पहली सभा में जमाई दे रहे हैं। तो प्रभु राम ने और बाकी लोगों ने कहा आपको पता नहीं है वो 14 साल सोया नहीं है, अभी पहली बार रिलैक्स हो रहा है, वो पहली बार वो शांत है, उसको कोई टेंशन नहीं है, राम सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको नींद आ रही है ना। ये है लक्ष्मण की सेवा, ये भाव बलराम जी का भाव है जो लक्ष्मण के रूप में निभा रहे हैं, वो खुद के लिए स्वयं के लिए कोई आराम नहीं है, कोई कन्वीनियंस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जिसकी स्वामी इसकी सेवा कर रहे हैं, सेव्य सेव्य व्यक्ति की सुविधा ही मेरी सुविधा है। कभी कभी कैसे है, हम ओके हैं तो हम सेवा करते हैं, हम बीमार हो गए या हम कुछ कष्ट हो गया तो नहीं करते, नहीं कर सकते, लेकिन उसके आगे का लेवल ये है कि हमको कष्ट हो रहा है फिर भी जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको आनंद ही देते हैं, वो अपने कष्ट को सहन करते हुए, ये हाई लेवल सेवा है। विपरीत काल में सेवा करना, अनुकूल काल में सब लोग सेवा करते हैं, विपरीत काल में पूरे हृदय से 100% दिल लगाकर सेवा करना बहुत कठिन बात है। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में उसका उदाहरण दिया है। तो ये लक्ष्मण जी, हमारे गुरु महाराज बताते बहुत सुंदर बात कि सीता देवी और राम का विवाह हुआ था, और विवाह में हम लोग बहुत शपथ लेते ना, बहुत सारे वाउज लेते हैं, तो वो शपथ जो है वो पति पत्नी के बीच में बंधन है। पति बोलेगा कि मैं इसकी रक्षा करूँगा, उसको भोजन दूंगा, कपड़े दूंगा, घर दूंगा, रक्षा करूँगा, शरीर की रक्षा करूँगा, मन की रक्षा करूँगा, भावना की रक्षा करूँगा, समाज के दृष्टि से रक्षा करूँगा, बहुत सारे वादे करता है, मैं इसको गाइड करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा, मायूस हो गए तो उसको हौसला दूंगा। तो पत्नी कहती है मैं एकनिष्ठ रहूँगी, मैं चरणों की सेवा करूँगी, पत्नी भी बहुत सारे वादे करते हैं, तो वो वादों से और शपथों से और वचनों से पति पत्नी का रिश्ता बनता है। तो सीता और राम एक दूसरे के प्रति वचनों से बद्ध थे, लेकिन भाइयों के बीच में कोई वचन नहीं होते हैं, कोई होता है क्या, जैसे शादी होते हैं भाइयों में कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। भाई बहन के पीछे भी 2 बार उत्सव होता है, एक बार रक्षाबंधन, एक बार भैया दूज, कुछ ना कुछ बंधन है, कुछ ना कुछ वादे हैं कि तुम आना फिर मैं आऊँगा, लेकिन भैयाओं के बीच में कुछ वादे, कुछ वचन, कुछ कुछ नहीं होता है। फिर भी लक्ष्मण इतने राम से बद्ध थे, ये उनकी महानता है, ऐसे बताया उन्होंने। देर इज़ नो रीज़न, देर इज़ नो वाई लक्ष्मण शुड बी सो बाउंड टू लॉर्ड राम। लेकिन राम के बिना एक श्वास भी नहीं ले सकते हो, एक दिन रहना भूल जाओ उसका, एक श्वास भी उसके बिना नहीं ले सकते हैं, उसकी सेवा किए बिना। इसलिए लक्ष्मण हमारे आचार्य हैं, बलराम जी हमारे आचार्य हैं, क्योंकि आचार्य क्या करते हैं, वो हमको भगवान की सेवा सिखाते हैं, भगवान के विषय में ज्ञान देते हैं और उनकी सेवा में लगाते हैं। तो सेवा लगाने से क्या होता है, हमारा जो कर्म फल है ना वो बंद नष्ट हो जाता है, हमारा जो बंधन है कर्मों का वो नष्ट हो जाता है और भगवान से हम जुड़ जाते हैं। वो भगवान से जुड़ने का काम हमारे गुरुजी करते हैं, वो गुरुजी के आदि गुरु कौन है, बलराम जी हैं जो लक्ष्मण के रूप में आ रहे हैं। यहाँ तक कि द्विविध गोरिल्ला था एक, वो सैनिक था एक राम का, बहुत राम भक्त था वो, बहुत बड़ी राम की सेवा की उन्होंने, राम रावण के युद्ध में बहुत पराक्रम किया, द्विविध महेंद्र और द्विविध और कौन थे, बहुत सारे थे ऐसे। लेकिन वो लक्ष्मण को ज़्यादा नहीं मानता था, उस पर लक्ष्मण से नहीं बनती थी उसकी, वो एक अपराध था उसका, राम की बहुत सेवा की लेकिन लक्ष्मण को जो आदि गुरु के प्रतिनिधि है उनका आदर नहीं करता था। वो एक काम की वजह से उसको कुसंगति प्राप्त हो गई, उसने बाणासुर का संग किया और वो द्विविध गोरिल्ला असुर बन गया। इसलिए केवल राम की भजन करना और लक्ष्मण को नहीं मानना ये अपराध है, केवल कृष्ण को भजन करना और बलराम जी को नहीं मानना अपराध है। गुरु के बिना हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, और गुरु की बिना भगवान नहीं मिलेंगे, और गुरु के अपराध करेंगे तो भगवान तो नहीं मिलेंगे, हम दैत्य बन जाएंगे, असुरों का संग प्राप्त होगा, कुसंगति प्राप्त करेंगे। तो द्विज गोरला को फिर बलराम ने मारा, बताऊंगा आपको कल कहानी उसकी। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी साक्षात गुरु तत्व हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को अपनी सेवा में बहुत आनंद आता था, कभी कुछ कष्ट नहीं हुआ, नींद भी त्याग दिया, भोजन भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, कुछ मिलेगा तो कंदमूल खाएगा, नहीं तो वो भी नहीं खाएगा, उपवास करेगा, बड़ा आनंद लिया सेवा का उन्होंने। लेकिन सेवा करना आसान नहीं होता है, सेवा करने में बहुत कष्ट होता है, बहुत चुनौतियाँ होती हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा होते हैं। तो लक्ष्मण के जीवन में भी बहुत प्रसंग आए। क्या प्रसंग हुआ कि वन में अब ये रह रहे साथ में, और मारीच आया, हिरण बन के आया ना, तो जब हिरण बन के आया तो सीता देवी बोले, अरे मुझे हिरण चाहिए, मुझे हिरण चाहिए, मैंने आज तक प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगा, अभी मैं पहली बार मांग रही हूँ, जब वनवास समाप्त होगा तो ये मैं खिलौना लेकर जाऊँगी, दरबार में सबको दिखाऊँगी। लक्ष्मण ही भगवान के प्रतिनिधि है ना, वो भगवान के गुरु गुरु हैं, वो गुरु तत्व हैं, वो क्या बता रहे हैं, देखो मैया प्रभु के निर्माण में ऐसा कोई जीव बनाया नहीं प्रभु ने, ऐसा हिरण कोई बनाया नहीं, आधा शरीर सोने का आधा शरीर चांदी का, चर्म जो है उसके ऊपर स्पॉट्स लगे हुए हैं और जो सिंह है उस पर रत्न लगे हुए हैं, ऐसा जीव भगवान ने बनाया नहीं है, तो मेरे विचार से ये हिरण नहीं है, राक्षस है ये, आप भूल जाओ इसको, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो कहते हैं कि देखो मैंने कुछ मांगा नहीं, पहली बार मांगा तो मुझे आप फिलोसफी सुना रहे हो, मुझे चाहिए। तो राम की बात लक्ष्मण सुनते हैं, लक्ष्मण की बात राम सुनते हैं, सही बात है, अगर विष्णु के निर्माण में ऐसा जीव नहीं है तो मतलब वो राक्षस होगा मायावी कोई, तो मार दूंगा उसको मैं, अगर मायावी राक्षस नहीं है तो चमड़ा लेके आऊँगा और उसको, या तो उसको लेके आके खिलौना बना दूंगा, उसको पेट एनिमल बनाऊंगा। हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं कि उसको, हमारा महाराष्ट्र में कुछ कुछ ऐसे बना देते हैं, वो क्या कहते हैं कि सीता देवी को उसका ब्लाउज पहनना था उसके स्किन का, लेकिन वो सही नहीं है, शास्त्र के अनुसार सीता देवी को वो हिरण इतना अच्छा लगा कि उसको खिलौने के रूप में उसको लेके जाना था अयोध्या में। तो बोले अगर वो राक्षस नहीं होगा तो मैं पकड़ूंगा उसको, लेके आके दे दूंगा, राक्षस ऐसा मालूम पड़ा तो मैं उसको वध कर दूंगा, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण जब तक मैं लौट के नहीं आऊँगा आपको इधर ही खड़ा रहना है, ठीक है। अभी खड़े लक्ष्मण, लक्ष्मण की इतनी महानता थी, लक्ष्मण ने कभी भी सीता जी के चरणों के ऊपर देखा नहीं कभी, प्रमाण क्या है उसका, जब उसके अलंकार मिले रास्ते में तो प्रभु रामचंद्र पूछ रहे हैं, गले का हार दिखा के पूछ रहे हैं, ये भाभी के है क्या, जरा बताओ, बोले बाबू मैं गले के हार को पहचानता नहीं हूँ, मैंने कभी गले में देखा ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे गले में क्या पहना है। पायल दिखाया तो बोला ये सीता देवी के हैं, क्योंकि मैंने कहा पायल दिखाया उसका। ऐसा महान जीव है लक्ष्मण जी, सोचो आप, भाभी के चरणों के ऊपर नज़र कभी उठाई ही नहीं उसने, वो अभी खड़े हैं नज़र झुका के पैरा दे रहे हैं, सीता देवी अंदर अपना काम कर रही है। उतने में वो हिरन, जैसे लक्ष्मण ने बोला था राक्षस निकला वो, और पूरा प्लॉट था उसका, प्लान था। वो क्या प्लान था कि जब जब रावण ने कहा जब अगर तुम्हारी मृत्यु होती है समझो रावण राम के बाण से, तो राम के आवाज़ में पुकारना हे लक्ष्मण हे सीता बचाओ। इसका अर्थ क्या हुआ, राम का वध हो रहा है, राम की मृत्यु हो रही है, और मृत्यु होते समय राम चिल्ला रहे हैं हे लक्ष्मण हे सीते बचाओ। तो सीता को लगता है कि मेरे पति का देहांत हो रहा है, लक्ष्मण चले जाओ प्रभु पुकार रहे हैं। अरे मैया आप भाभी क्यों चिंता करते हो, राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये राक्षस की माया भी, मैं पहले ही बोला आपको, आप नहीं समझ रहे हैं। तो सीता देवी ना एक कठोर वाक्य बोलती है जो कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा दोनों सहन नहीं कर सकता। कहते अभी मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने बिना मतलब बिना अर्थ बिना कारण के जंगल में आने की जिद क्यों की। साप तो मेरे पति को था, मैं तो उसकी पति थी पत्नी थी, मुझे जाने का अधिकार है, तुम्हें कोई आने का काम नहीं था। साप तुमको वरदा क्या बोलते हैं उसको, वनवास का साप तुमको हाई नहीं, तुम बेकार में आ गए हमारे साथ सेवा के भाव से। अभी मुझे समझ में आ रहा है तुम क्यों आए। उनको तुमको पता था कि जंगल में कभी कोई प्राणी मेरे पति को खा लेगा फिर तुम मेरा भोग करोगे, इसलिए तुम आए हो, इसलिए मेरे कहने पर भी तुम जा नहीं रहे हो। कितना कठोर वाक्य बोला लक्ष्मण जी के, इतना बड़ा वीर है वो, वह प्रचंड शस्त्र अस्त्र को धारण करके प्रचंड राक्षसों का संहार कर सकता है, लेकिन ये कठोर शब्द जो है वो सहन नहीं कर सकता है, उससे भी ज़्यादा बलशाली आघात है ये। तो लक्ष्मण बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बोले भाभी ऐसे वचन आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको अगर मेरे चरित्र पर संदेह हो रहा है तो फिर मुझे जाना ही होगा। तो बाण से लक्ष्मण रेखा निकालते हैं, वो कहते इसके आगे मत जाना, और बड़े दुखी होकर ये जानते हुए कि ये कुछ भी सत्य नहीं है, ना राम संकट में है ना राम की मृत्यु हो रही है, कुछ भी नहीं है, फिर भी भाभी के कठोर वचनों की वजह से जाना पड़ता है उसको। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल एक बार लक्ष्मण चयन करते हैं, और बाद में क्या होता है, रास्ते में वो राम मिलते हैं, अरे लक्ष्मण यहाँ क्या कर रहे हो तुम, तुमको मैंने आदेश दिया था। तो संक्षेप में बताया सब कुछ, फिर भी तुमको छोड़ना नहीं चाहिए था, वो तो एक भावना प्रधान स्त्री है, वो भावना के वजह से कुछ भी बोल सकती है, लेकिन तुम तो पुरुष हो, तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं रह नहीं पाया वहाँ पर, मेरे हजारों अश्रुओं की नदियाँ बही मेरी, मैं इस ऐसे वाक्य को सहन नहीं कर पाया। अभी हम दोनों यहाँ पर हैं, कुटिया में कोई नहीं है, ज़रूर कोई हिंस श्वाबद उसको खा गया होगा, या कोई राक्षस उसको उठा के ले गया होगा। दोनों ढूंढते हैं, देखते हैं कुटी में आते हैं, देखते हैं सीता गायब। तो एक तो कठोर वचन सहन किया, सीता देवी को गायब होते भी देखा, फिर राम का विलाप भी देखा, वन वन भटक रहे हैं रो रहे हैं सब जगह, फिर वो सब देखा कितने महीने एक साल तक राम विरह में रहे, कष्ट भोगते रहे, क्या क्या प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया, फिर मिले, फिर मिलने के बाद सुग्रीव ने तमाशा किया, फिर उसको दंड देना पड़ा जो कठोर वचन बोले जगाना पड़ा, फिर खोज चालू हो गई, फिर मिले, फिर सेतु बांधा, कितना कष्ट हुआ। एक सीता देवी अगर ये नहीं बोलती, ये कष्ट नहीं देती लक्ष्मण को, तो ये सुरा आगे का रामायण नहीं होता, लेकिन सहन करना पड़ा सेवा भाव में, क्या करेंगे क्या बोलेंगे, राम भी यहाँ से बोल रहे हैं वो वहाँ से बोली, दोनों सहन करना पड़ रहे हैं। वो ठीक है चलो, उसके बाद सीता को रिहा किया, रावण को मारा, और लेके आने का समय आया तो रावण बोलते हैं मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा। लक्ष्मण बोल रहे अरे भाभी पवित्र है, भाभी पवित्र है प्रभु भाइया, क्यों उसको आप त्याग कर रहे हो। नहीं, उसको अग्नि परीक्षा देनी होगी, लक्ष्मण चिता जलाओ। अभी चिता जलाने के लक्ष्मण को बोल रहे हैं, लक्ष्मण नदियाँ बहा रहे हैं आंसुओं की और चिता बना रहे हैं। चिता को बोले अभी अग्नि जलाओ, तो अग्नि भी जला रहे हैं, पूछ रहे हैं चिता बनाऊं, बना दो, अग्नि जलाना है जला दो। और सीता देवी की परीक्षा देखनी पड़ी उनको, उनको पता है पवित्रोत्तम माता है ये, इसको अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ रही है। वो भी उनको सहन नहीं हुआ कि मेरे भैया की जो इच्छा है वो मेरी इच्छा के विरुद्ध है, मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी की ऐसी परीक्षा हो, लेकिन भैया बड़े हैं इसलिए मुझे आदेश पालन करना पड़ रहा है। सेकेंड टाइम कष्ट हुआ, ये सब हो गया, सीता देवी पास हो गई, बाहर निकली और फिर उनका प्रभु ने स्वीकार किया, फिर राज्याभिषेक हुआ, फिर रानी बनी। उसके बाद एक नाई, एक धोबी था, उसकी पत्नी एक दिन घर के बाहर थी एक रात को, वो लौट के आई तो पति पत्नी का झगड़ा हो गया। और धोबी क्या बोला, मैं थोड़ी राम हूँ, राम ने 1 साल 360 दिन बाहर रही हुई पत्नी को घर पे लिया, मैं थोड़ी राम हूँ, मैं तुम्हें नहीं लूँगा, चले जाओ घर के बाहर। तो गुप्त हीरो ने ये खबर सुनाई राम को, तो प्रजा के अंदर एक व्यक्ति के अंदर मन में ऐसा विचार है, मतलब कई लोगों के मन में ऐसा विचार हो सकता है, इसलिए लक्ष्मण को बुलाया, बोला लक्ष्मण आ जाओ। उस समय सीता देवी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, लव कुश का जन्म नहीं हुआ था, गर्भवती थी। तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, रथ बनाओ, सारथी बनकर सीता को बोलो हम आपको वन में लेकर जा रहे हैं, वाल्मीकि के आश्रम में संतों का संग मिलेगा, तो बड़ी खुशी खुशी निकल जाएगी वो, कुछ बोलना नहीं उसको, जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसको बोल देना कि प्रभु राम आपका त्याग कर रहे हैं, आपको अभी इधर ही रहना है। तो लक्ष्मण को बड़ा कष्ट हुआ उस समय पर, तो क्यों कर रहे हैं, एक धोबी कुछ बक रहा है तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो। तो कहते लक्ष्मण राजधर्म पति धर्म से बड़ा होता है, राजा की जिम्मेदारियाँ पति की जिम्मेदारियों से बड़ी होती है और ज़्यादा विशाल होती है, पति धर्म को तोड़कर भी राजधर्म पालन करना पड़ता है। तो लक्ष्मण को ये बात जची नहीं, फिर भी बड़े भाई के आदेश करना है तो फिर वो पालन करना पड़ा। रथ बनाया, सीता देवी को आमंत्रित किया, बिठाया और वन में लेके जा रहे हैं, सारथ्य भी कर रहे हैं, घोड़ा चला रहे हैं और आँखों से नदियाँ बह रही है। सीता देवी बड़ी खुश है, अरे संतों का संग होगा, प्रेगनेंसी में संतों का संग अच्छा होता है। लेकिन देखा तो लक्ष्मण रो रहे हैं, लक्ष्मण क्यों रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा है वो, फुट फुट के रो रहा है। उतने में वो वाल्मीकि का आश्रम आता है, फिर उसको उतारते हैं, फिर बहुत देर रोते हैं, उसको आश्चर्य हो रहा है, अरे तो आप रो क्यों रहे हो। फिर रोना थोड़ा सा संभल जाते हैं, बोलते हैं प्रभु राम ने आपको त्याग दिया है, आपको अभी वन में ही रहना है, उसके ऊपर भी आंधी गिरती है ना, इतनी कठोर, इतना कठोर निर्णय जो है, इतने कठोर निर्णय की आंधी भी तोड़ना का काम किसको दिया है, बलराम लक्ष्मण को ही दिया है कि ये न्यूज़ ब्रेक करना है उसको, ये न्यूज़ देना है सीता को। तीन बहुत कष्ट वाली बात उनके सेवा में हुई, तब उन्होंने निश्चय कर दिया कि अभी मैं अगले जन्म में आपका छोटा भाई नहीं बनूंगा, बड़ा भाई बनूंगा, तो जब भी मुझे लगेगा कि आप कुछ बोल रहे हो मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं पालन करूंगा, बड़ा भाई का अधिकार है, भाई ठीक है। तो अगले जन्म में बलराम जी बने, बड़े भाई बने, ताकि बड़े भाई धर्म के अनुसार छोटे भाई को आज्ञा दे सकते हैं, छोटे भाई की तरफ से कुछ अप्रिय अगर कोई घटना होती है तो उसको मना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे प्रभु बलराम जी के रूप में जब भी आए तभी भी सेवा भाव छोड़ा नहीं, स्थाई भाव छोड़ा नहीं, उनका फाउंडेशन अधिष्ठान जो सेवा का है उसको त्याग नहीं किया, प्रभु कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही चले। केवल 2 बार ऐसा दिखाया कि मैं आपकी आज्ञा नहीं पालन करता, मतलब आपकी इच्छा से नहीं करता। कृष्ण की इच्छा थी कि लक्ष्मण बलराम जी महाभारत में पांडवों के पक्ष से युद्ध करना चाहिए, कौरव अन्याय का अधर्म का पक्ष है, तो हरे कृष्णा थोड़ा बालक को बाहर ले जाइए आप कृपा करके। सो प्रभु की इच्छा थी कृष्ण की कि वो हमारे पक्ष में युद्ध करे, तो वो करना भी चाहिए, लेकिन बलराम जी अवधूत हैं, अवधूत, अवधूत का अर्थ क्या होता है, इनके मन में क्या चल रहा है और क्या करेंगे इसका कोई पता किसको चलता नहीं है। अभी इसका भीम पर भी प्रेम है, पांडवों पर प्रेम है, लेकिन दुर्योधन पर भी प्रेम है। उसको मिथिला में जाकर गदा सिखाया था उन्होंने, मिथिला में जा रहे थे ना, तो उधर वो रास्ते में मिले दुर्योधन, अच्छा सत्कार किया, बड़ा प्रसन्न कर दिया। और बलराम जी ने पूछा वत्स क्या चाहते हो, बोलते आप तो गदा आयुद्ध के गुरु हो, आपसे मुझे गदा सीखना है। बोला वो सिखाएंगे, पूरा मिथिला का जो निवास था वो पूरा इसको सिखाने में खर्च किया उन्होंने, तो बड़ा प्रेम हो गया उसको बलराम जी को दुर्योधन से। इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि अपनी इकलौती बहन जो सुभद्रा है उसका विवाह उसका करने का प्लानिंग किया। वो कितना प्रेम होगा सोचो, बहन देने का प्लान कौन करेगा, इतना प्रेम होना चाहिए। तो इस पर इतना प्रेम, तो बाद में फिर भगवान ने उनको अपनी इच्छा को पूर्ण करने को मजबूर किया, बात अलग है। लेकिन वो बलराम जी उस समय युद्ध में, जब युद्ध का समय आया तो उधर देखा दुर्योधन खड़े, इधर देखा पांडव खड़े, बोले मुझे तुम्हारे झगड़े में, परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना है, तुम लोग जो करना है करो, मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ। तो बड़े भैया के नाते अपनी स्वतंत्रता उन्होंने एग्जीक्यूट की उस समय में, और पूरे भारत भर भारतवर्ष में भ्रमण किया और एंड में लौट के आए। शादी भी उसको सुभद्रा की उसके साथ करनी थी, लेकिन जब कृष्ण भगवान ने अच्छा षड्यंत्र रचाया और सुभद्रा को बोला उसके बाद भाग जाओ अर्जुन के साथ, और रथ का भी जो लगाम है तुम पकड़ना ताकि मैं दूर से दिखाऊंगा कौन किसको भगा के लेके जा रहा है। देखो आप दूरबीन लगा के देखो, आप बोल रहे हो अर्जुन भगा के ले जा रहा है, तो सुभद्रा रथ में बैठनी चाहिए, अर्जुन के हाथ में लगाम होना चाहिए। लेकिन रथ में तो अर्जुन बैठा है, लगाम तो सुभद्रा के हाथ में, वो घोड़े आके वो ही भाग रही है। देखो आप तो देखते, अरे हाँ सुभद्रा तो देवी घोड़े चला रही है, क्या बोलेंगे भैया ये अच्छा रिश्ता है। हाँ कन्हैया मैं जानता हूँ तुम जो चाहते हो वही होता है, चलो अभी जो भी है, अभी भगा के ले गया है, स्पर्श कर लिया है, तो उसका दुर्योधन के साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ, तो भाई अर्जुन के साथ ही विवाह होगा, जाओ जाओ लेके आओ उसको। और बड़े धूमधाम से शादी कर दी उसकी, दहेज वहेज दिया बढ़िया बहुत धूमधाम से, और दुर्योधन का पत्ता अपनी इच्छा के खिलाफ काट दिया। ये दो चार प्रसंग छोड़ेंगे ना, उसके बाद में, उसके पहले, उसके बीच में जितना भी कार्य हुआ वो सब भगवान ने कृष्ण के अनुसार ही किया। नाम के लिए बड़े भाई, नित्यानंद की लीला में भी ऐसे ही, जो गौरांग प्रभु ने चाहा वही किया। नित्यानंद प्रभु को संन्यास लेना था, बोले नित्यानंद प्रभु आप विवाह करो, मैं संन्यास बन के अपना काम करूँगा, तुम विवाह करके तुम्हारा काम करो, मैं संन्यास लेके बड़े बड़े लोगों को प्रचार करूँगा, तुम शादी करके जो पतित से पतित है उनका उद्धार करो। देखो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य, ब्रह्मानंद सरस्वती से बड़े बड़े, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती से बड़े बड़े महारथियों को, उनके हजारों शिष्य थे, बड़ा पद था, ऐसे लोगों को भक्त बनाया। और नित्यानंद प्रभु ने शादी करके क्या किया, जगाई मधाई से पतित पतित लोगों को उद्धार किया, बैलेंस कर दिया। लेकिन उनको बनना था सन्यासी, लेकिन छोटे भाई है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बोला तो ऐसा करो, तो उन्होंने हाँ कर दिया उसको। देखो तो बलराम जी का जो मूल स्थाई भाव है, सेवा भाव, वो नष्ट नहीं होता है। ऊपर से थोड़ा डेकोरेशन चेंज होता है लेकिन भावना सेम रहती है, और यही हमको देखना है कि बलराम जी तत्व इतने महान तत्व हैं, उनकी कृपा से कृष्ण मिलते हैं, उनकी कृपा से राम जी की प्राप्ति होती है, उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, उनकी कृपा से आश्रय प्राप्त होता है, वो सबके आश्रयदाता है। बलराम जी आश्रय विग्रह हैं, कृष्ण राम ये विषय विग्रह हैं, जिनको हम चाहते हैं, जिन पर प्रेम करते हैं, और उनको प्रेम करने के लिए आश्रय बलराम जी देते हैं, लक्ष्मण जी देते हैं। और बलराम जी को, लक्ष्मण को त्याग कर हम राम और कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये तत्व है बलराम जी का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।